हमारी इंशा अल्लाह ताला इस अशरे की जो सीरीज है उसको थोड़ा सा देख लेती हूँ। इस सीरीज के नाम जैसे आपने देखा होगा, चलो मक्का की गलियों में चल के देखें। इसका मकसद ये है कि थोड़ा सा नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को झांक के देख लिया जाए। ये सीरीज किताबों का एक सेट है, सीरत इंसाइक्लोपीडिया, उससे ली गई है जो दारुसलाम की पब्लिकेशन है। 15 जिल्दों पे मुश्तमिल है, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल है, लेकिन हम चूंकि सारी डिटेल नहीं कर सकते लिहाजा उसमें से सिर्फ चंद एक वाक़यात लिए गए हैं। ये बहुत ऑथेंटिक किताब है, सीरत पे कोशिश की गई है कि कुछ भी इसमें अपनी तरह से शामिल ना किया जाए, क्योंकि मामला सीरत का है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई फर्जी कहानी नहीं है कि जिसमें खुद से अपनी तरह से कहानियां ऐड कर ली जाए। तो एक्सेप्ट ये कि जिन बातों को या हालात को बयान किया गया उनको परसोनिफाई किया गया बाज जगहों पर, तो इस सीरीज का मकसद यही है कि आप जाने नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को एक कहानी की सूरत में, और आपके दिल में उनके लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए कि उनसे बढ़ के किसी और की मोहब्बत ना हो। तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे ये सीरीज़।
हरम की मुकद्दस फजाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुकद्दस फजाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में।
चलो मक्का की गलियों में चलकर देखें। आज मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था कि मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली और मेरी वो ख्वाहिश जो बरसों से दिल में थी कि काश ऐसा कभी होता कि मैं 1400 साल पहले के दौर में पैदा हो चुकी होती, और काश मैं उन लोगों में से होती जो मेरे नबी के इर्द गिर्द थे। काश मुझे भी वो माहौल मिलता, मुझे भी वो ज़माना मिलता। मैं उस ज़माने में पैदा तो ना हो सकी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद मेरे नबी के साथी चुने थे। मगर आज जिस चीज़ पर मैं खुश हूँ वो ये कि मेरे रब ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी कि मैं उस ज़माने में झांक के देख सकूँ और महसूस कर सकूँ उस दौर को, उस ज़माने को, उन जगहों को जिनमें कभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैं उन लोगों में से तो ना हो सकी जो आपके इर्द गिर्द थे, मगर कम अज़ कम उनकी ज़िंदगी की एक झलक तो देख सकती हूँ। आज मेरी खुशी इसी बात पर थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो क्या देखूँगी, वो क्या समा होगा, वो क्या लोग होंगे, क्या फिज़ा होगी। मेरे साथ मेरे रब ने एक गाइड भी भेज दिया जो मुझे सवाल करने पे बताएगा जवाब। आत गाइड आ चुका था और मैं जाने के लिए तैयार थी। उसने मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और जब खोली तो मेरे इर्द गिर्द तपती धूप थी। दूर दूर तक एक सहरा था। मैं अपने घर पे नहीं थी, मैं कहीं और थी। कुछ दूर मैंने देखा कुछ औरतें काफले की शक्ल में अपनी सवारियों पर सवार तेजी से किसी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। उन्हीं में एक कमजोर औरत अपने दूध पीते बच्चे और शौहर के साथ एक सफेद गधी पर सवार सबसे पीछे रही थी। उसकी गधी इतनी कमजोर थी कि मुश्किलों से कदम उठाती थी। उनके साथ एक ऊंटनी भी थी जो लगता था पता नहीं कब से फाका ज्यादा है। औरत कुछ परेशान सी लग रही थी, क्यों ना होती, उसके बच्चे ने रो रो के आसमान सर पे उठाया हुआ था। लगता था कि बच्चा बहुत भूखा है। उसके चेहरे से भी कमजोरी आयां थी। औरत बच्चे को अपने सीने से लगाती मगर शायद दूध नहीं मिल रहा था, लिहाजा वो बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। उधर सवारी का ये हाल था कि मिनटों का सफर भी घंटों में तय कर रही थी। काफले में शामिल दूसरी औरतें अपने अपने मर्दों के साथ सवारियों पर दूर निकल गई थी। और यूं लगता था कि सभी इस खानदान की सुस्त रफ्तारी से तंग आकर आगे चले गए। ये खानदान मुसलसल एक मशक्कत में पड़ा हुआ था। ना तो इनके पास बच्चे की भूख मिटाने का कोई सामान था, ना ही सवारी को तेज दौड़ाने का कोई रास्ता नजर आ रहा था। इसी कश्मकश में ये चलते जा रहे थे कि दूर एक बस्ती नजर आने लगी। काफले की दूसरी सवारियों ने बस्ती को देख के अपनी सवारियां मजीद तेज कर ली और इधर इस औरत की थकी मांदी गदी मजीद सुस्त हो गई। खुदा खुदा करके ये खानदान बस्ती तक पहुंचे। मैं भी इनके साथ साथ थी। मैंने देखा एक छोटी सी बस्ती है, मिट्टी के घर हैं जिनकी छतें अक्सर खजूर की छाल की बनी हुई। हर तरफ गहमा गहमी है। कुछ लोगों के आगे पीछे सियाफाम गुलाम पंखा झल रहे हैं। यूं मालूम होता था कोई सरदार किस्म के लोग हैं। उन्होंने कीमती लिबास पहने हुए थे और बड़े अकड़ के आगे आगे जा रहे थे। बाकी कुछ लोग दरमियाने तबके के मालूम होते थे। इसी तरह मैंने दूर देखा कि एक इमारत के गिर्द लोग चक्कर काट रहे हैं और सब नंगे हैं। मुझे देखकर बहुत शर्म आई। औरतें भी नंगी और मर्द भी। औरतों ने सिर्फ एक कपड़ा सा आगे चिपका रखा था जिससे काबिले सतर हिस्से छुपे हुए थे, मगर बाकी सारा जिस्म तो नंगा था। ये क्या हाल बनाया हुआ इन्होंने? मैंने गाइड से पूछा, ये क्या जगह है? उसने कहा, ये काबा है। मैं हैरत जदा हो गई। काबा? ये काबा कैसे हो सकता है? काबा की ऐसी हालत? ये तो कहीं से भी उस काबा के करीब भी नहीं जिसको मैंने देखा हुआ था। काले रंग के रेशमी गिलाफ के साथ सोने की तारों से लिखी कुरानी आयात से सजा हुआ काबा कहाँ और कहाँ ये काबा? इस पर भी गिलाफ था, मगर शायद इन लोगों के नजदीक यही कोई कीमती कपड़ा होगा। जो गिलाफ इस पर पड़ा हुआ था, ये स्याह नहीं था, सफेद था, रेशमी नहीं था, बल्कि कोई मिस्र का कपड़ा मालूम हो रहा था। काबा भी वैसा तो नहीं था। हतीम की जगह पर भी दीवार थी, ये स्क्वायर काबा नहीं था, लंबा सा था। और इसके दोनों तरफ दरवाजे थे, एक तरफ से लोग जा रहे थे, दूसरी तरफ से निकल रहे थे, और दरवाजा भी जमीन के साथ लगा हुआ था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि काबा ऐसा भी हो सकता है। इसके चारों तरफ बुत पड़े हुए थे, कोई बड़ा बुत कोई छोटा। लोग आके अपने अपने बुतों के सामने चढ़ावे चढ़ा रहे थे, कोई कुर्बानी कर रहा था उनके आगे। इन बुतों की बहुत ही नहुसत थी। काबे की हालत भी खस्ता लग रही थी। सिर्फ इतना ऊंचा था कि एक आदमी के कद से थोड़ा सा ऊंचा, तकरीबन 9 हाथ तक होगा, और ऊपर छत भी नहीं थी। दीवारें भी बोसीदा हो रही थी। ये वो काबा नहीं था जैसा मैं अपने जमाने में देखती रही हूं। मैं काबे को देखने में मगन थी। इतने में मुझे ख्याल आया कि वो खानदान कहाँ गया। मैं दौड़ी देखा तो वो औरत एक जगह खड़ी अपने काफले वालों की औरतों से बातें कर रही थी। हर औरत की गोद में एक बच्चा था, और एक कहने लगी, हलीमा, अब तो कोई बच्चा भी नहीं बाकी बचा, सब बच्चे तो ले लिए गए हैं। बस वहां उस घर में उनके पास चली जाओ, वहां एक यतीम बच्चा है, उसको अभी तक किसी ने ले लिया। वैसे भी उनसे कोई खास मुआवजा तो मिलेगा नहीं, उस बच्चे की सिर्फ एक माँ है और एक दादा है। हलीमा लगता था कुछ मायूस सी हो गई, तो बोली, तुम्हारी मर्जी है, अगर वो लेना है तो ले लो। हलीमा का चेहरा उतर गया। औरतों के बताने के बावजूद अपनी पूरी कोशिश करने लगी कि कहीं और से कोई और बच्चा मिल जाए, मगर सभी घरों के बच्चे दाइयों ने जल्दी जल्दी पहले ही ले लिए थे। वो वापस आकर अपने शौहर के पास थक के बैठ गई। इतनी दूर से ये खानदान सफर करके आया था, रास्ते में भी इतनी मुश्किलात उठाई थी, अब पहुंचे ही हैं तो आगे से सब दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। ये चाहते थे कोई मालदार खानदान का बच्चा मिल जाए तो इनके भी दिन फिर जाए। इनकी गति तेज चल लेती तो अभी तक ये भी किसी अमीर खानदान के बच्चे को गोद ले चुके होते। मगर इंसान कुछ प्लान करता है और अल्लाह ताला की प्लानिंग और होती है। हलीमा नहीं जानती थी कि जो बच्चा अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखा हुआ है, वो उनके लिए दुनिया और आखरत की भलाइयां सपेट लाएगा। उनके तो नसीब खुल जाएंगे, उनका नाम कयामत तक बाकी रहेगा, जब जब आशिकाने रसूल अपने रसूल की सीरत लिखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो इनको याद करते रहेंगे। ये अफसुर्दा थी कि इनको मालदार खानदान का बच्चा नहीं मिला, ये अफसुर्दा थी कि इनकी गति तेज क्यों नहीं चली। मगर इंसान बाज चीजों में अपने लिए बुराई समझता है, हालांकि उसी में उसके लिए भलाई होती है। ये क्या जाने इनको क्या मिलने वाला है, और इसी में भलाई थी। अगर ये भी जल्दी आ जाते तो इन दूसरी औरतों की तरह कोई और बच्चा ले चुके होते। उन औरतों को तो आज तक कोई जानता भी नहीं। यूं लगता था हलीमा के सारे ख्वाब टूट गए। अपने शोहर से कहने लगी, हारिस, क्या करें फिर, कोई भी बच्चा अब बाकी नहीं रहा, खाली हाथ जाने से तो बेहतर है उस यतीम बच्चे को ही ले लेते हैं, चलो कुछ ना होने से तो बेहतर है। औरत का शोहर बोला, ठीक है फिर जाकर उसी को ले आओ, हो सकता है अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए बरकत डाल दे। हलीमा उठी, बोझल कदमों से चलती हुई एक घर की तरफ बढ़ी। घर के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से इजाजत मिली। सामने एक नहायत मुआज्जज खातून खड़ी थी, शराफत और बुजुर्गी उनके चेहरे से टपक रही थी। उनके करीब ही एक दूध पीता मासूम बच्चा लेटा हुआ था। मैं आगे बढ़ी और ना जाने क्यों बच्चे के चेहरे पे नजर पड़ते ही मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। ये तो मेरे नबी हैं, रहमतुल्लिल आलमीन, जी चाहा मैं इस बच्चे को उठा के सीने से लगा लूं। मासूम बच्चा सुकून से सो रहा था। यूं तो हर बच्चा प्यारा लगता है, मगर इस बच्चे के चेहरे पर ऐसा नूर था जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बच्चे की वालदा दाया से कहने लगी, उनकी फिक्र को भांप लिया था उन्होंने, तसल्ली के अंदाज में कहने लगी, ए दाया, इस बच्चे से आप बिल्कुल मुतमईन रहे, ये बड़ी शान वाला बच्चा है। दाया हलीमा ये सुनकर कुछ हैरान सी हुई, बच्चे की वालदा ने कहा, इसकी पैदाइश से पहले मुझे ख्वाब आया था कि इसका नाम अहमद रखूं, और इसके दादा ने इसका नाम मोहम्मद रखा है। हलीमा बोली, मोहम्मद? ऐसे लगा जैसे उन्होंने पहली दफा ये नाम सुना हो। लगता है ये खान उनके उन लोगों में आम नहीं था। आमना कहने लगी, जब ये बच्चा पैदा हुआ है तो जानती है, मैंने ख्वाब में देखा मेरे जिस्म से एक नूर निकला है जिससे शाम के मोहल्लात रोशन हो गए, और मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ कि मैं हामिला हूं। इस हमल को मैंने जरा भी बोझल नहीं पाया जैसे औरतें पाती हैं। और इसका नाम, ये हमारे खानदानी नामों में से नहीं। हाँ, जब लोग पूछते हैं कि आपने ये नाम क्यों रखा, तो इसके दादा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला आसमानों में और अहले जमीन जमीन में इसकी तारीफें बयान करें, इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। मैंने इसका ख्वाब में नाम देखा कि इसका नाम मुझे ख्वाब में बताया गया कि अहमद रखूं, और इसके दादा ने इसका नाम मोहम्मद रखा। आमिना की ये बात सुन के मेरे मुंह से सुबहान अल्लाह निकला, कितनी आला सोच है दादा की। मैंने तो कभी अपने बच्चों की पैदाइश पर ऐसा सोचा भी नहीं, ना ऐसी ख्वाहिश की कि मेरे किसी बच्चे का आसमानों में भी जिक्र ऐसा हो कि उसकी तारीफें हो, और जमीन वालों में भी उसकी तारीफें हो। ये इतने पुराने लोग हैं मगर किस कदर समझदार है, और मैं इतनी पढ़ी लिखी होके आज तक ऐसी बात ना समझ सकी। दाया हलीमा ये सुन के हैरान भी हुई और खुश भी हुई, और उन्होंने बच्चे को गोद में ले लिया और खुशी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। माँ ने बच्चे को जाते हुए देखा तो अशार की सूरत में दुआएं कही, उईज़ुहू बिल्लाही ज़िल जलाल मिन शर्री मा मर्रा अलल जिबाल हत्ता अराहु हामिल हिलाल। मैं अपने बच्चे को अल्लाह जुलजलाल की पनाह में देती हूँ उस शर से जो पहाड़ों पे वाकया हुआ, यहाँ तक कि मैं ऐसे ऊंट पर सवार देखूँ और देख लूँ कि वो गुलामों और दरमांदा लोगों के साथ एहसान करने वाला है। माँ की ये दुआ कितनी खूबसूरत थी, मुझे बहुत पसंद आई। इन लोगों की दुआएं भी कितनी प्यारी हैं। हलीमा बच्चे को लेकर अब कदरे इत्मीनान के साथ अपने शौहर के पास आई। बच्चे को भूख लगी तो हलीमा ने अपने सीने से लगा लिया, और प्यारे बच्चे ने दूध के घूंट भरने शुरू कर दिए। वही हलीमा जिनका अपना बच्चा मक्का के सफर में दूध ना होने की वजह से बिलबिलाता रहा था, अब दाई हलीमा का सीना दूध से इतना भर गया कि नए आने वाले मेहमान ने भी पिया और उनके अपने बच्चे ने भी पेट भर के पिया। फिर दोनों मासूम बच्चे सुकून से सो गए, और हलीमा और उनके शौहर हारिस ने भी सुख का सांस लिया। ना जाने कितनी रातों से अपने बच्चे के रोने की वजह से उनको नींद नसीब नहीं हुई थी। सुबह हुई तो हारिस हलीमा के पास आए और बोले, हलीमा खुदा की कसम तूने एक बड़ी बाबरकत रू ली है, ये तो बड़ी शान वाला बच्चा है। मैंने ऊँटनी देखी तो उसके थन दूध से भरे हुए थे, देखो कितना दूध हुआ है। हलीमा ये देख के बहुत खुश हुई, बर्तन दूध से भरे हुए थे। काफले की रवानगी का वक्त हो चुका था। हलीमा बच्चे को लेकर उस गधी पे बैठी जिस पे आई थी, मगर अब वो गधी इतनी तेज दौड़ने लगी कि सबको हैरान करती है। मैं देख रही थी वो गधी सबको पीछे छोड़ के आगे भागी जा रही थी, हत्ता कि हलीमा की सहेलियां पुकारने लगी, ए अबू जुहैब की बेटी ये क्या हुआ, ये वही गधी है जिसपे तो सवार होके आई थी। हलीमा खुशी से बोली, हाँ हाँ वल्लाही ये वही है। हलीमा की सहेलियां आपस में कहने लगी, कोई खास बात हुई है इसके साथ, वही सफर जो आते हुए बरसों का लग रहा था अब ऐसे कट गया जैसे कोई मसला ही नहीं। दूर से कच्चे घरों के आसार नजर आने लगे। गदी ने अपनी बस्ती को करीब भांप के रफ्तार मजीद तेज कर दी। और ये जोड़ा जब घर पहुंचा तो नए मेहमान की आमद से इनके बाकी बच्चे बहुत खुश हुए। तमाम बच्चों ने इस नन्हे से मासूम बच्चे को घेर लिया। हलीमा की बड़ी बेटी शेमा ने आगे बढ़ के बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार करने लगी। वो बच्चे को लिए लिए फिर रही थी। इसके बाद वो घर जो फकरो फाके का मस्कन लगता था, अब वहां गोया बहार आ गई थी। सारा इलाका जो कहत ज़दा मालूम होता था, उसी इलाके में इस घराने में अजीब बरकतें नजर आ रही थी। दूसरे लोगों की बकरियां दूध देने के काबिल नहीं थी और इस घराने के अफराद पेट भर के बकरियों का दूध पी रहे थे। मैं सोच रही थी हलीमा उस वक्त कितनी अफसरदा थी जब इनको एक यतीम बच्चे को लेना पड़ा, पर कितना हिचकिचा रही थी। आज उसी बच्चे की वजह से कितनी बरकतें समेट रही हैं। वाकई अल्लाह ताला का हर फैसला बंदे के हक में अच्छा ही होता है। उनको अपनी नहीफ गदी की सुस्त रफ्तारी की वजह से गुस्सा आ रहा था और गम भी था, मगर देखो उसमें भी अल्लाह ने खैर रखी थी। फिर हम क्यों तकदीर के फैसलों पर गमगीन होते हैं? क्यों अल्लाह ताला के फैसलों पे मुतमईन नहीं हो जाते? उस वक्त की हलीमा को क्या मालूम था कि आगे जाके यही बच्चा कितनी खैर और बरकत का बायस बनेगा। वो तो अपने सामने आने वाली इन बरकात को सिर्फ देख रही थी। अगर रहती दुनिया तक कितनी बरकतें उन्होंने समेट ली, वो खुद भी नहीं जानती थी। मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और फिर खोली तो हलीमा की आवाज मेरे कानों में पड़ी। सीन बदल चुका था। हलीमा की गोद में एक 2-2.5 साल का बहुत ही प्यारा बच्चा, दिल मोह लेने वाली सूरत, ऐसी जिसको देख के प्यार आए। हलीमा बच्चे की माँ से कह रही थी, नहीं आप मान जाए ना, सिर्फ कुछ अरसे की तो बात है। मोहम्मद कुछ मजबूत भी हो जाएगा और वैसे भी मक्का में वबाएं फैली हुई हैं और मुझे डर है कि बच्चा कहीं बीमार ना पड़ जाए। आमना कुछ तजब्जुब में थी। यूं लगता था कि वो भी बच्चे को अपने से मजीद जुदा नहीं रहने देना चाहती, मगर हलीमा के मुसलसल इसरार पे वो मान गई और हलीमा बच्चे को लेके खुशी खुशी वहां से बाहर निकली। मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद की, जब खोली तो देखा आमिना सख्त बीमार हैं। उनकी उम्र कुछ 30 साल के करीब लग रही थी। एक ऊंट पर आमिना थी और साथ उनकी बांदी बरका, जिसको वो उम्मे ऐमन कह के पुकार रही थी, और साथ 6 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम। आमिना की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो एक जगह पे सवारियों को रोकना पड़ा। बांदी ने बच्चे को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर सूरत हाल तो तेजी से बिगड़ रही थी। कोई तसल्ली काम नहीं आ रही थी। फिर इस नन्हे से बच्चे के सामने इसकी वालदा ने दम तोड़ दिया। उम्मे ऐमन ने सिसकियां लेते हुए बच्चे को सीने से लगा लिया, ऐसे जैसे एक माँ बच्चे को प्यार करती है। इस छोटे से बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी? मेरा दिल भर आया। पहले बाप नहीं, अब शफीक माँ भी सफर के दौरान ही फौत हो गई। ना घर करीब है, ना कोई प्यारा यहाँ है। एक बांदी के सिवा तो कोई देखने वाला भी नहीं। बच्चे की सिसकियां मेरा दिल काट रही थी। भरी दुनिया में ये बच्चा अकेला रह गया। ना इसका कोई बहन भाई और ना ही माँ बाप। उम्मे ऐमन बड़ी समझदार लड़की थी, बड़े प्यार से बच्चे के आंसू पोंछ रही थी और तसल्ली दिए जा रही थी। मैंने देखा ये बच्चा कितना मुख्तलिफ है दूसरे बच्चों से, ना कोई वावेला ना चीखो पुकार, हालांकि एक बहुत बड़ा सदमा टूटा था। इतना मुहसब बच्चा आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ। फिर मैंने देखा उम्मे अमन इनको लेकर रवाना हो गई। इनके सामने इनकी वालदा को दफना दिया गया था। अब जब ये बच्चा यहां से रवाना हो रहा है तो इनके पास दुनियावी तौर पर कोई सहारा नहीं। इन्होंने अपने बाप को तो देखा ही नहीं, माँ भी चली गई। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ, वाकई जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं उन पे कितनी बड़ी आजमाइशें आती हैं। मैं सोच में पड़ गई, कितनी मुश्किलात, कोई नाजो नाम उठाने वाला नहीं। ये छोटा सा काफला चलता चला जा रहा था। मक्का की बस्ती में पहुंचे तो मैंने देखा एक उधेड़ उम्र बूढ़ा आगे बढ़ा और इस बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार करने लगा। मैंने गाइड से पूछा ये कौन है, वो बोला ये इस बच्चे के दादा अब्दुल मुत्तलिब है। मैंने फिर देखा यही बच्चा है, दिन गुजर रहे हैं और दादा अपने पोते पे इंतहाई मोहब्बत और शफकत निछावर कर रहे हैं। इतनी तो शायद वो अपने बेटों से भी नहीं करते होंगे, और क्यों ना करें। ये बच्चा था ही बहुत मुनफरिद, ना कोई जिद करना, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, ना ही कोई नाजेबा अल्फाज मुंह से निकालते। हालांकि इनकी तरबियत करने वाले वालदेन का साया तो सर पे था ही नहीं, ना हर वक्त कोई खेल कूद के मूड में होना। मैं हैरान थी इस बच्चे की तरबियत करने वाला फिर कौन है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के, जिसने हिफाजत की भी। मैंने आंखें बंद की और खोली तो खुद को काबा के बिल्कुल करीब पाया। मैंने देखा वही बुजुर्ग शख्स बैतुल्ला का तवाफ कर रहे हैं और साथ शेर पढ़ रहे हैं। ऐ मेरे रब मेरे सवार मोहम्मद को वापस ले आ, ऐ मेरे रब मुझ पर एहसान फरमा उसको लौटा दे। मैंने देखा एक शख्स दूसरे से पूछ रहा है ये कौन है, उसने जवाब दिया ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है, इन्होंने अपने पोते मोहम्मद को गुमशुदा ऊंट तलाश करने के लिए भेजा था। ये जब भी उसे किसी काम के लिए भेजते हैं तो वो हमेशा कामयाब होकर लौटता है, आज इसे देर हो गई है अभी तक वापस नहीं आया, ये बुजुर्ग इसी वजह से परेशान है। मैं उस शख्स की बात सुनकर अपने रब के निराले कामों पे मुस्कुरा दी। वो एक बच्चे से उसके वालदेन अगर ले लेता है तो किसी दूसरे को उनकी जगह पर दे देता है जो शफीक है और मेहरबान है। मुझे अब्दुल मुत्तलिब पे भी बड़ा ही प्यार आया कि मेरे नबी को उस वक्त मोहब्बत देने वाले हैं जब वो अपने वालदेन की शफकत से महरूम हो गए। मेरे देखते ही देखते वो बच्चा एक ऊंट को लिए हुए कहीं से नमूदार हुआ। इतनी सी उम्र में इतने जिम्मेदार, कोई लगभग 6-7 साल की उम्र होगी। मैंने सोचा इस उम्र में मेरे बच्चे तो ऐसी कोई जिम्मेदारी का सबूत देने वाले ना होते। दादा ने आगे बढ़ के पोते को गले से लगाया और बोले ऐ मेरे बेटे क्या बताऊं मैं तुम्हारे लिए किस कदर परेशान था। मैं कभी किसी के लिए भी इतना परेशान नहीं हुआ, अल्लाह की कसम अब मैं तुम्हें कभी किसी काम के लिए नहीं भेजूंगा, ना तुम मुझसे कभी जुदा होगे। मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई, मगर अल्लाह ताला का फैसला तो कुछ और ही था। दादा ने तो कह दिया तुम मुझसे कभी जुदा नहीं होगे, लेकिन कुछ ही अरसे में कुछ और हो गया। अगला सीन जब मेरे सामने खुला मेरे नबी पे गम का एक और पहाड़ टूट चुका था, जिनके दम से उनकी जिंदगी में बहार थी वो ही छोड़ के जा चुके थे। कोई लगभग 8 साल की उम्र होगी इनके लिए, तो अब वो तमाम रिश्ते खत्म हो गए जिन पर कोई फख्र करता है। दादा के बाद चचा वगैरह तो थे, मगर किसी चचा में भी दादा की तरह की ना कुव्वत थी, ना आजम, ना हौसला, ना वैसी सखावत और ना दूरंदेशी, ना ही किसी और में वैसा रोबो दबदबा था। हाँ, मैंने ये जरूर देखा कि अब्दुल मुत्तलिब ने जब सांसें उखड़ने लगी तो अपने बेटे अबू तालिब को बुला के आखिरी वसीयत के तौर पर कहने लगे, मेरे इस पोते का तुमने ख्याल रखना, अब तुम्हारे ऊपर इनकी जिम्मेदारी है। मैं हैरान थी इसलिए कि अबू तालिब तो खुद हाल हुलिये से बहुत कसम पुरसी की हालत में लग रहे थे, फकरो फाका उनके चेहरे से ही आता। एक ऐसे एक और बच्चे का खर्चा उठाएंगे? हमारे यहाँ तो हम खाते पीते भी होते हैं, तब भी किसी एक फर्द का भी खर्चा उठाना अपने ऊपर बोझ समझते हैं। हत्ता कि कोई मेहमान ही 4 दिन से ज्यादा रह जाए तो हमें फिक्र होने लगती है, और कहाँ ये एक बच्चे का खर्चा उठाएंगे। मैंने देखा उस दिन मेरे नबी पे कितना बड़ा गम का पहाड़ टूटा। यूं लगता था आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां है। मैंने इस 8 साल के बच्चे को दादा के जनाजे के पीछे चलते चलते देखा, सभी छोड़ गए। शायद कोई और होता तो गम में टूट के बिखर जाता, मगर इस बच्चे का सबर मिसाली था। हो सकता है अल्लाह ताला ने अभी से इतना सख्त जान बनाना था कि आगे के हालात सह सके। मेरे से इनकी रोना देखा नहीं जाता था, दिल करता था तसल्ली दूं, आंसू पोंछ दूं और कह दूं, आपको क्या पता आपकी एक गम पर कितने ही लोग अपनी जानें निछावर करने को तैयार होंगे। आप ना रोएं, आपका एक एक आंसू मेरे दिल को छलनी कर रहा था, मैं आपके लिए क्या करूं। आज की सीरीज यहाँ तक मुकम्मल होती है इंशाल्लाह ताला। कल जब मिलेंगे तो आगे देखेंगे कि क्या होता है।